بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. خدا کے فضل و کرم سے ہم اب اپنے عشرہ محرم کی مجالس سے تقریباً اب اختتامی مراحل سے ملحق ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر تو اب کل کی ہی مجلس باقی رہ گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی 11th مجلس ہے، اس سے پہلے آج کی 10th مجلس ہے، تو اس سے پہلے 9 مجالس میں ہم جو پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے تھے، کوشش کرتے رہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کم از کم اس کی روح کو، اس کے اصل نچوڑ کو ضرور اخذ کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا پورا نظام ایک قاعدے اور ایک قانون پر مبنی ہے، یعنی یہ رول بیسڈ سسٹم ہے، اس میں پرنسپلز ہیں، اس کے قوانین ہیں، اور جو قوانین ہیں ان کا بنانے والا اور کوئی نہیں ہے مگر وہ ہستی جس نے اس زندگی کی بنیاد رکھی ہے، یعنی خداوند متعال. اور زندگی کے قوانین جس طریقے سے قائم کیے گئے ہیں تو ان میں ایک حد تک فلیکزیبلٹی تو ہے، لیکن ان کو توڑنے مروڑنے کی، بینڈ کرنے کی، اپنی منمانی کرنے کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ زندگی کا ایک انتہائی اہم قانون ہے جسے ہم پریکٹیکلی تقریباً زیادہ تر اگنور کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور اسپیشلی ان ٹرمز آف آخرت، یعنی کہ جب ہم اپنی اخروی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے میں امید کرتا ہوں کم ہے، لیکن ہماری آخرت کے لیے زیادہ. تو اب یہاں پر ہم نے جب مجالس کے سلسلے منعقد کیے، یا ایسے ہی ہم اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس میں ان قوانین کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بھی کسی قانون یا کسی پرنسپل کو فالو کریں گی؟ کیا कि मैं मजलिस में किस हालत में आऊं, किस तरीके से मुनाकिद करूं, इससे मेरा क्या नतीजा बरामद होना चाहिए। और जो एक बहुत अहम बात है वो क्या है कि आपके आखिरत के जो नताएज हैं वो आपके जाहिरी काम या अमल से ज्यादा आपके नफ्स की हालत पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर 10 आदमी बराबर खड़े होकर नमाज जमाहत अदा कर रहे हैं तो अपेरेंटली सब के सब बिल्कुल एक ही जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन 10 आदमियों की नमाज का मकाम उनकी आखिरत में और खुदा की बारगाह में एक नहीं होता, बल्कि 10 के 10 लेवल्स होंगे। इसी तरीके से अगर 100 आदमी, 200, 1000 आदमी बैठकर फर्श अज़ा पर मजलिस सुन रहे हैं तो उस मजलिस का जो भी सवाब है हर एक के नामे अमल में एक जैसा नहीं होगा। तो इसका फर्क आने की वजह क्या है? फर्क आने की वजह आपका जाहिरी अमल नहीं है, जाहिरी काम नहीं है, बल्कि आपके नफ्स की हालत है कि आप किस हालत में, यानी आपका नफ्स किस हालत और किस कंडीशन में एक अमल को अंजाम देता है। ये आखिरत में फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। तो मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें कम से कम इन बुनियादी बातों को आप हजरात जरूर अप्रिशिएट करके और अपनी जिंदगी को इस हवाले से बेहतर बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन कवानीन और इन कवायद को समझते हुए। तो ये निचोड़ है। और फिर हमारा जो टॉपिक है कि हम इन अय्याम में के जो कम से कम हमारे पास पहली मुहर्रम से लेकर और अरबाइन तक जो हमारे हाथ में ये 50 दिन रहते हैं, तो इसमें हमारे पास एक सुनहरी मौका है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद की इस की तरफ से दी गई इस अजीम शान कुर्बानी से ज़्यादा इस्तफादा करें। और जैसा कि मैंने आपसे की खिदमत में अर्ज़ किया था 2-3 मजालिस पहले कि करबला एक राह और एक रस्ते का नाम, करबला किसी वाकये का नाम नहीं है, एक सीरीज या चेन ऑफ इवेंट्स का नाम नहीं है कि जिसको हम रिकॉल कर लें और रिमेम्बर कर लें, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके मुखलिस अस्हाब ने मोमिनीन के वास्ते एक राह और एक रास्ता कायम किया है। उस राह का नाम करबला है। और वो राह जैसा कि मैंने आपको कुरान की आयतों से भी सुनाया, जिन दो आयतों को हमने सरनामा कलाम करार दिया कि उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि मोमिन किताब खुदा से वाबस्ता हो और मोमिन अपने अंदर कुछ सिफात रखता हो जिनमें से दो सिफात खास तौर से बयान की गई हैं, सब्र और आयात खुदावंदी पर यकीन। यानी खुदा की जो निशानियां हैं इस जिंदगी में हमारे सामने मौजूद हैं उन पर यकीन। तो हम इंशाल्लाह इस जगह पर आ जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कायम किए हुए करबलाई रास्ते पर सफर तय कर सकें, उस पर आगे जा सकें। कि जैसे कि हमें हमारे सामने ये चीज़ मौजूद है कि बहुत सारे अफराद ऐसे हैं मोमिनीन के जिन्होंने इस राह को तय किया है और इस रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल की है, और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं हम जैसे मुझ जैसे कि जो अपनी जिंदगी में कहते तो रहते हैं फया लई तनी कुन तो माकुम फाफू माकुम, कि अगर काश मैं आपके साथ होता तो मैं भी आपकी तरह या आपके असहाब की तरह फौज अजीम पर फायज हो जाता, उसको हासिल कर लेता। लेकिन हमारी, क्योंकि हम अपने आप को बनाने पर, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पर तवज्जो नहीं देते, हम उस जानिब तफक्कुर नहीं करते, उसके लिए अमल नहीं करते, तो इसलिए हमारी काश जो है ना वो काश ही रह जाती है मरते दम तक, और उसका खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो पाता। तो ये तमाम की तमाम बातें हमें हमारे लिए एक समझे लम्हे फिक्रिया हैं, हमारे लिए थॉट प्रोवोकिंग हैं, हमारे लिए इस अमर का बायस है कि हम अपनी जिंदगियों को हमेशा तब्दील करने की कोशिश करें मुहर्रम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से, और हम अपना हिसाब रखें कि इस दफा के मुहर्रम में अगर हमें 1443 हिजरी का जो मुहर्रम है कि इस मुहर्रम में अगर हमारी हालत यहाँ पर है, इस लेवल पर है, तो इंशाअल्लाह अगले मुहर्रम में हमें इससे कुछ दर्जे ऊपर जाना है। कि मोमिन की जिंदगी का निजाम और हिसाब किताब इस तरीके से करता है। तो इन बातों को आप इंशाअल्लाह मद्देनजर रखेंगे। हम सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशनी में तामीर किरदार के हवाले से बातचीत जारी रखे हुए हैं, और इसमें हमने दो बुनियादी नुकात का जिक्र किया था, एक अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर, के जिसे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असल इरादे के तौर पर बयान फरमाया मदीने से निकलते हुए, और दूसरा जो आपके इस पूरे करबला के वाकये में जो बात हमको नजर आती है वह है तलब नुसरत, के आपने बार 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 लोगों को अपनी नुसरत के लिए बुलाया है, और सदाए इस्तगासा में जो आपकी तलब नुसरत है जाहिर है कि वो हम सबको हिफ्ज है वो सदा। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे मरहले पर आते हैं सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो यहाँ पर हमारे सामने जो चीज आती है वो है मौत के हवाले से इमाम अलैहिस्सलाम की मानवियत या एक इनकलाबी नजरिया या इनकलाबी किरदार। इसका क्या मतलब है? जाहिर है कि इस बिना पर भी मुझे थोड़ी सी वजाहत तो लाजमन करनी पड़ेगी कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स की, क्योंकि अगर मैं उसके बगैर बात करूंगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ही खाली कुछ जुमले आपके सामने रखूंगा तो शायद बात आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। जब तक कि हम मौत के हवाले से जो बुनियादी कंसेप्ट है, और आप एक बात तो इंशाल्लाह और नोट कर रहे होंगे कि जो भी नुक्ता या जो भी नजरिया हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं तो उसकी असल और असास कुरान करीम से हासिल करते हैं, और इस उसूल को भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से समझें और अप्लाई करें कि जो भी हम दीन सीखते हैं या दीन के हवाले से जिस मारिफत की तरफ भी हम जाते हैं या कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो फोरमोस्ट एंड फंडामेंटल वही ये इलाही है, कलाम खुदा है। कि आप अगर इंशाअल्लाह अपने बुनियादी नजरिए को, अपनी फाउंडेशन को कुरान करीम से अखज करेंगे, उसके बाद उस पर उसके साथ आइम्मा अलैहिस्सलाम या रसूल खुदा 14 मासूमीन की अहादीस और कलेमात को मुलाहजा करेंगे तो वो कलेमात कुरान की आयतों की तफसीर करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, और फिर उसके बाद आप मजीद अकली उलूम, साइंसी उलूम, फलसफी, इरफानी, उन तमाम चीज़ों को भी उसके जरिए से भी तफसीर व तशरीह कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपके जो नज़रियात की या आइडियोलॉजी की जो इमारत बनेगी इस तरीके से वो मजबूत और मुहकम होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास तरीके आते हैं कि कुरान करीम ऑलमोस्ट इग्नोर्ड होता है, और इग्नोर्ड होना दोनों सेंस में, यानी एक इस सेंस में है कि कुरान करीम को रेफर ही नहीं किया जाता, और दूसरा इस सेंस में है कि कुरान करीम से रेफरेंस लेते हैं लेकिन उसमें दिक्कत नहीं करते। जैसे कि अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि चाहे कुरान हो चाहे कलाम अहले बैत हो, इन दोनों से इस्तेफादे के लिए दिक्कत नजर और एक علمی مقام کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ وہ کلام نہیں ہے جو چلتے پھرتے آیا ہو, جو اسٹریٹ میں استعمال ہونے والی باتیں, کسی نے کسی سے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. نہ قرآن ایسا ہے نہ کلام اہل بیت ایسا ہے. تو اس کو ٹھہر کے پڑھنا ہے جس طریقے سے خود قرآن نے کہا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن پہ توقف کرنا ہے, ٹھہرنا ہے, غور کرنا ہے, ایک ایک حرف پر غور کرنا ہے, کیونکہ قرآن کریم میں ایک حرف, ایک لیٹر بھی مہمل نہیں ہے, یعنی یوز لیس نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ قرآن کریم کو بس یوں ہی اٹھایا, کہیں سے ترجمہ دیکھ لیا اور ایک معنی سمجھ لیا. یہ ویسے ہی گمراہی کا ایک شاخصانہ ہے اور گمراہی کا رستہ ہے. تو بہرحال, تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے قرآن کریم سے اپنے نظریات کو لیں, پھر اس کے بعد روایات کے ساتھ اس کو سپلیمنٹ کریں, اس کو آگمنٹ کریں, اس کو بلڈ کریں, اور پھر دیگر عقلی علوم بھی اس کو سمجھنے میں چیزوں کو مدد دیتے ہیں, جیسے موت کے حوالے سے بھی ایسی بات ہے. تو موت کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک کنسپٹ اور پھر قرآن کے حوالے سے جو نظریات ہیں کہ ان پر کوئی کہ ان کے ذریعے سے, تاکہ ہمیں اصل بات سمجھ میں آئے کہ موت کیا ہے. ابھی میری گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنے دماغوں میں جھانکنے کی کوشش کریں اور اس بات کو ملاحظہ کریں کہ آپ خود موت کو کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ سے کہا جائے کہ موت کی تعریف کرو, ڈیتھ کو ڈیفائن کرو, آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور مطلب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی تعریف کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں اس بات کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کی موسٹ فنڈامنٹل ریالٹی کو تقریباً نہیں جانتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ موت کیا ہے, جبکہ موت سے بڑی حقیقت زندگی میں اور کوئی نہیں. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, کہ مجھے اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور ہے کہ میں ایک دن موت سے دوچار ہوں گا, میں ایک دن موت کے مرحلے سے گزروں گا. تو لیکن اس کے حوالے سے بھی ہمارے علم میں, معرفت میں, یقین میں ایک بلکہ بہت سارے گیپس ہیں. موت کو ہم جس معنی میں لیتے ہیں یا جس بھی معنی میں لیتے ہیں, تو وہ ایک پلیزنٹ ایسپیکٹ نہیں ہے, وہ ایک خوشگوار ایسپیکٹ نہیں ہوتا. یعنی شاید ہی ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہو کہ جو موت کے لفظ سے خوشی محسوس کرتا ہو, یا موت کا آنا جس کے لیے کوئی خوشگوار ایونٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہو اس کی لائف میں. موت ہمارے لیے لذتوں کو تباہ کرنے والی, خوشگواری حیات کو ختم کرنے والی, زندگی کے تمام تانے بانے کو بکھیر دینے والی کسی چیز کا نام موت یہ ہے. جیسا کہ شاعری میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی جب زندگی میں تمام کی تمام چیزیں ویل کنیکٹڈ ہوں, لائک اے ویل آئلڈ مشین, زندگی آپ کی رن کر رہی ہو, آپ کہتے ہیں یہ زندگی ہے, یہ حیات ہے. اور جب یہ سب ڈسمینٹل ہو جائے, مشین آف لائف, مشینری آف لائف, تو ہم کہتے ہیں اب یہ موت والی صورت حال ہو گئی. یعنی ایون ہمارے لیے جب موت کا ورڈ ہے کہ اگر ہمارا موبائل فون بھی چارج اس کا ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم لفظ ڈیڈ یوز کرتے ہیں کہ مائی فون از ناؤ ڈیڈ, میرے فون کی موت واقع ہو گئی. یعنی موت کو ہم کس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر فنکشنلٹی ختم ہو جائے, جہاں پر کام کاج کارآمد ہونا, صحیح سے یوزفل ہونا, یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ موت ہے, یہ موت آ گئی. اور جہاں پر چیزیں صحیح سے چل رہی ہوں, زندگی کا نظام درست طریقے سے رواں دواں ہو, तो हम वहां पे कहते हैं कि ये हयात है, ये हमारा नजरिया है तकरीबन। कुरान क्या कहता है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ये कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत के बारे में क्या कहा या मौत के बारे में क्या समझाया, क्या नजरिया दिया, फिर उसको हम देखते हैं और फिर इस बात का जायजा लेते हैं कि हम क्या अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, इस हवाले से आगे ला सकते हैं। तो इसमें एक बात पर और भी गौर कीजिएगा इंशाअल्लाह कि ये जुमला मुझे इस लिहाज से याद आता है कि मौत की हकीकत के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला है जो शायद आपके बिल्कुल वसीयत के ही कलमात में शामिल है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मौत के असरार से, मौत के राजों से, सीक्रेट्स ऑफ मौत से पर्दा हटाने पर सर्व किया, लेकिन मशीयत इलाही यही है कि मौत के राजों पर पर्दा पड़ा रहे। यानी इससे ये बात समझ में आती है कि मौत की जो हकीकत है वो उसके बारे में मशीयत खुदा ये है कि इंसान उसे तजुर्बे के जरिए से सीखे और हासिल करे। ये लफ्जों से या कंसेप्चुअली ट्रांसमिसिबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, अगरचे कि हम उसको थोड़ा बहुत जान सकते हैं, उसके बारे में कुछ बुनियादी बातों को या उसके तकाजों को बेहतर तौर से समझ सकते हैं, लेकिन मौत की हकीकत और मौत के असरार क्या हैं ये उसी वक्त पता चलेंगे इंसान को जब इंसान मौत के मरहले से गुजरेगा, उस राह को तय करेगा, तब उसके लिए ये बात रोशन होगी और वाज़े होगी। तो ये भी एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का अजीब जुमला है। कुरान करीम ने हमें मौत के हवाले से कुछ अजीब मारिफ अता किए हैं, अजीब मारिफ अता किए हैं, और उनमें सबसे पहला जो जुमला है वो क्या है जो आप लोग बहुत पढ़ते हैं, सबको याद होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्या मतलब हुआ इसका कि हर नफ्स ज़ाइक़ है, चखता है, चखने वाला है मौत को। अब यहां पर जब कुरान करीम ने ये आयत इस्तेमाल की है, इसमें आयत के ये चार हर्फ हैं, ये जुमले हैं, ये अजीब बयान है, यानी ये बहुत ही अजीब बयान है। क्यों? इसलिए कि हमसे अगर पूछा जाए कि मौत क्या है तो हम शायद यही कह सकते हैं कि मौत एक हादसे का नाम, एक फेनोमेनन है, एक ऐसी चीज है कि जो इंसान पर आ जाती है और उसकी जिंदगी के निजाम को खत्म कर देती है। उससे ज्यादा हमें नहीं पता कि मौत क्या चीज है। तो मौत को वाक चखना, ये मौत का चखना के क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि मौत बाकायदा कोई चीज है, जिस तरीके से आप शरबत लेते हैं, चाय लेते हैं, पानी लेते हैं और उसको चखते हैं या खाना कोई खाते हैं, तो मौत एक ऐसी चीज है कि जिसे हर नफ्स चखने वाला है और चखेगा, और कुल्लो नफ्सिन का लफ्ज ये बता रहा है कि कोई एक नफ्स भी इस हालत से बाहर नहीं। यानी मौत का जायका हासिल करने के हवाले से मोमिन काफिर मुशरिक मुनाफिक में कोई फर्क नहीं। कुल्लो नफ्सिन, हर नफ्स, और हर नफ्स को अगर आप एक्सटेंड करें तो हो सकता है कि बियॉन्ड द ह्यूमंस, इंसान से आगे भी जैसे हैवानात हैं उनके भी नफूस हैं, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। अब यहां पर जो एक जुमला है कुरान करीम का, और इसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इसी नजरिए को ही तकवीयत दी है अपने कलेमात में, जो इंशाअल्लाह हम उसको देखेंगे कि आप जब किसी चीज को चखते हैं, जब आप किसी चीज को अपने यानी शरबत लिया, उसे आपने एक घूंट अपने मुंह में उंडेल लिया और वो चीज आपके अंदर सरायत कर गई, पेनिट्रेट कर गई, तो कौन किसको कंज्यूम कर रहा है? कौन किसको कंज्यूम कर रहा है? जो शरबत है वो पीने वाले को कंज्यूम कर रहा है, ये जिसने घूंट लिया है वो उस शरबत को कंज्यूम कर रहा है? तो इससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये नफ्स है जो हकीकतन मौत को कंज्यूम करता है, ना कि मौत नफ्स को खत्म कर देती। यहां से कुल्ल नफ्सिन जायकतुल मौत से ये एक अजीब नजरिया, और यही चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और उनके सामने इस बात को बयान किया है कि मौत तुम्हारे लिए खात्मा नहीं है, मौत इंसान को खत्म नहीं करती, बल्कि मौत दर हकीकत इंसान के लिए अल्लाह की वो नेमत है कि जो उसे हयात जावेदानी अता करती है। मैं इंशाल्लाह आपको इमाम अलैहि सलाम के वो जुमले भी सुनाऊंगा कि मौत अगर मरगस नज़द मन आयद के, इसमें दीवाने शम्स में ये कुछ अबयात मौजूद हैं कि मौत अगर कोई मर्द होती, कोई इंसान होती, वो नज़द मन आयद और मेरे करीब आती, ता दर आगोशश बेगीरम तंग तंग, तो मैं उसको अपने गले से लगा के भींच लेता, मैं उसको अपनी आगोश में लेकर अपने गले से लगा कर भींच लेता, उसका इस्तकबाल करता। मन अजू जानी सितानम जावेदा, और मौत का इस्तकबाल मैं क्यों करता या करूं? इसलिए कि मौत के जरिए से मुझे हयाते जावेदानी नसीब होती है। ये सब बातें लोगों को खुद समझ में नहीं आई हैं। जब अगर दीवाने शम्स में जो मौलाना रूमी का कलाम है, जो ये सब बातें लोगों को खुद से समझ में नहीं आई हैं, अगर मासूम इन दरवाजों को ना खोलते, अगर मासूमीन हमें ये मारिफत अता ना करते, वरना हम तो मौत को वही समझे बैठे हुए कि मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हमारी नजर में तो मौत जिंदगी के अज्जा का, जिंदगी के कंपोनेंट्स के बिखरने का नाम है। हमारी नजर में मौत जिंदगी के खत्म हो जाने का नाम है। ये मासूम है कि जो हमें, और कुरान करीम की आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और फिर जो कुरान करीम ने मक्तूल फी सबीलिल्लाह का जो कंसेप्ट दिया कि जो अल्लाह के रस्ते में कत्ल हो जाए, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवातुन, कि जो सबीले खुदा में मकतूल हो जाएं उनके लिए मैयत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करो, वला तकूलू, उनको अमवात मैयत बोलो भी नहीं, बल अहिया उन, बल्कि वो जिंदा हैं। हम पूछे कहाँ जिंदा है? उनका तो खून आलूद जिस्म, उनके तो बिखरे हुए आजा हमारे सामने मौजूद है, कहाँ जिंदा है? अब शहीद कासिम सुलेमानी, खुदा उनको उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, जिस तरीके से वो शहीद हुए हैं, कहाँ कहाँ जिंदा है? आजा बिखर गए। खुदा कह रहा है बल अहिया उन, लेकिन वलाकिन ला तशुरून, उनकी जिंदगी का शुरूर तुम्हारे पास नहीं, तुम उस जिंदगी का अभी शऊर नहीं रखते, तुम अंधेरे में हो, तुम कैद खाने में बंद हो मादियत के। इंसान के लिए मकतूल फी सबीलिल्लाह होना हरगिज हरगिज मय्यित होना नहीं है, मुर्दा होना नहीं। ये कुरान और मासूम ने हमारे सामने इन दरीचों को खोला है, और जिसका नतीजा यह होता है कि जिन लोगों ने इस मारिफत को हासिल कर लिया, जिन्होंने इन हकीकतों को जान लिया, वो कौन होते हैं? मौत के आशिक होते हैं, मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। और मौत की बेहतरीन शक्ल क्या है, मौत की बेहतरीन सूरत क्या है, कि इंसान अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, खुदा उसे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करे और खुदा की राह में ये जिंदगी अपने अंजाम तक पहुंचे और मौत आ जाए, ये बेहतरीन है मौत। अब ये खुदा की मर्जी कि खुदा अपने रास्ते में हमें बिस्तर पे मौत देता है, किसी और जगह मौत देता है, मैदान जंग में मौत देता है। अब हमारे लिए हमारा ये मसला नहीं, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और जो सूरह तौबा किया है इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुम अल जन्ना यक्तुलूना व युक्तलून, के वो किताल कत्ल करते हैं और कत्ल हो जाते हैं खुदा की राह। और कत्ल होने का मायना जो है ना, वो कत्ल होने के मायना भी काफी है, खाली तलवार और तीर से कत्ल होना नहीं है और भी। तो बहरहाल ये बेहतरीन जिंदगी है, ये बेहतरीन है मौत है, और मौत हयात जावेदानी को लेकर आती है। मौत का घूंट, जैसा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नि तजाफी अन दारिल गुरूर वल इनाबति इला दारिस सुरूर वल इस्तेदाद लिल मौत क़ब्ल हुलूलिल फौत, कि ऐ खुदा मेरे पहलू को अलग कर दे धोखे वाले घर से, क्योंकि ये धोखे वाला घर ही है कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट जिंदगी की किसी हकीकत को समझने नहीं देती। हमें क्यों समझ में नहीं आती हकीकतें, इस दार गुरूर में इन्वॉल्वमेंट की वजह से समझ में नहीं आती। वल इनाबती इला दार सुरूर, और वो घर वो मकाम जहां हकीकतन सुरूर और आराम और लज्जत है, मेरी तमाम तवज्जुहात उधर फोकस कर दे। वल इस्तेदाद लिल मौत, इस जुमले पे खास तौर से गौर करें, इस्तेदाद यानी कैपेबिलिटी, किसकी किस चीज की कैपेबिलिटी मुझे अता फरमा दे, मौत की कैपेबिलिटी अता फरमा दे। कबला हुलूलिल फौत, इससे पहले कि इंतकाल मेरे अंदर हुलूल कर जाए। इंतकाल का मतलब ये कि इस बदन को एक दिन नेचुरली मरना है और खत्म होना है, ये इंतकाल का वक्त है। तो इंतकाल के वक्त से पहले मैं इस काबिल हो जाऊं कि मौत का जायका चख लूं और मेरी जिंदगी हयात जावेदानी से कनेक्ट हो जाए, मुलहक हो जाए। यहां पर हम कुरान करीम का फिर एक और कंसेप्ट आपके सामने बयान करते हैं कि जिसमें मौत और मय्यत होने में फर्क किया है कुरान ने। मौत का जायका एक बात है और मय्यत हो जाना दूसरी बात है। मय्यत यानी मुर्दा, अगर हम अपने जबान में समझना चाहें, बिकमिंग डेड, एक्सेप्टिंग डेथ समथिंग एल्स, बिकमिंग डेड समथिंग एंटायरली डिफरेंट, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और ये भी कुरान करीम ने हमको समझाया। जैसे देखें, एक मिसाल है कुरान की कि जमीन मय्यत हो जाती है और हम आसमान से पानी नाजिल करते हैं, उस आसमान से नाजिल होने वाले पानी की बिना पर और उसकी बरकत से वो जमीन जो मय्यत हो चुकी थी वो आहियाई ना हो, उसको हम दोबारा से जिंदा कर देते हैं। अब अगर आप इस कुरान की मिसाल पर गौर करें तो ये एक बहुत ही आई ओपनर है, बहुत बड़ा आई ओपनर है हयात और मौत के हवाले से, या जिंदा और मुर्दा होने के हवाले से, कि जमीन जिंदा कब है, कि जब उसमें से फसल उगती है, सब्जा निकलता है, जमीन में एक एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी, जब वो एक्टिविटी मौजूद है तो कुरान कहता है कि ये जमीन जिंदा है। और जब वो चीज खत्म हो जाती है, जमीन खजा में ऑटम में सब्जा उगाने से महरूम हो जाती है, सब कुछ बंजर हो जाता है, वीराना हो जाता है, तो उसको कुरान कहता है कि ये जमीन मुर्दा है। ये जमीन क्या हो गई? मैयत हो गई। तो अब यहां पर हमारे लिए जिंदा और मुर्दा की एक तारीफ सामने आ रही है कुरानी नुक्ता नजर से, कि हर वो शय जो वो काम करे जिसके लिए वो बनाई गई और खल्क की गई है वो जिंदा है, और हर वो चीज जो अपने मकसद खिलकत को पूरा करना छोड़ दे वो मैयत और मुर्दा है। अब ये निजाम मौत नहीं है, ये मौत नहीं है, मैयत मुर्दा होने की बात है। और ये रूल सिर्फ जमीन पर नहीं अप्लाई होता है, बल्कि ये कानून इंसानों पर भी अप्लाई होता है। सूरह अनआम की आयत नंबर 121, अवमन काना मैतन, क्या वो शख्स जो मैता यानी मुर्दा था, क्या वो इंसान जो मुर्दा था, फअहयी ना हो और फिर हमने उसको जिंदा किया, उसको हयात दी, व जालना लहू नूर यमशी बही फिन्नास, और हमने उसके लिए एक नूर करार दिया जिसको लेकर वो इंसानों के दरमियान चलता फिरता है, मूव करता है इंसानों में, लोगों में। अब यहां पर जिसको कुरान कह रहा है कि क्या वो शख्स जो मुर्दा था और हमने जिंदा किया, और जिंदगी की पहचान और निशानी क्या बयान कर रहा है कुरान? नूर, कि हमने उसको नूर दिया जिसको लेकर वो इंसानों के दरमियान चलता फिरता है, यानी इसका मतलब ये है कि इंसान उस नूर को फील करते हैं जो नूर हयात है, वरना इस जुमले का मतलब नहीं है कि इंसानों के दरमियान यमशी बही फिन्नास। ये मुर्दा और जिंदा होना इंसान का कौन सा है? ये वो नहीं है डेड बॉडी और लिविंग, नहीं, ये मैयत कौन है कि जिसने अभी तक ईमान का जायका नहीं चखा था, जो अभी तक कुफ्र की हालत में था, शिर्क की हालत में था, हिदायत से दूर था। ये इंसान अपने मकसद खिलकत को पूरा करने से महरूम है और मैयत है, यानी जितने अफराद जितने लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर कमर बस्ता थे वो क्या थे? मैयत थे, मैयत हकीकतन मुर्दा थे। और ये मुर्दनी जो है ना, ये मैयत होना, मुर्दा होना, ये कतन काबिले तारीफ नहीं है। जिस तरीके से मौत को गले लगाना, मौत का इस्तकबाल करना, मौत की इस्तेदाद पैदा करना, यह काबिले तारीफ मकाम है। और इस तरीके से मौत को कबूल कर लेना और मौत का घूंट अपनी जात में ले लेना इंसान को हमेशा हमेशा की जिंदगी तक ले जाता है, लेकिन ये मैयत हो जाना यह हरगिज काबिले तारीफ नहीं। और इसका मतलब क्या है के सुकूत, डीके, डिक्लाइन, डिवास्टेशन, ये मैयत होने का, मुर्दा नफ्स के मुर्दा होने का, इंसान की जात के मुर्दा होने के फिर ये तमाम के तमाम नतायज बरामद होते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं कि फिर इंसान कुछ ऐसे होते हैं कि जो जीते जी मैयत होते हैं, यानी कि वो जिंदा हैं जिसने ईमान से अपने आप को दूर रखा, ईमान के नूर से महरूम है, वो आपको अपनी जिंदगी में चलता फिरता नजर आता है लेकिन खुदा की निगाह में मैयत है। और ये मैयत कौन सी मैयत है? कि जो अपने मकसदे खिलकत को पूरा करने से महरूम और महजूर है, ये इनकेपेबल हो गया है कि अपने मकसदे खिलकत को पूरा कर सके। तो ये कुरान करीम ने जो हमें एक अजीब तरीके से बात समझाई कि इंसान के लिए हमने मौत को रखा, मौत एक हकीकत है, और बकौल इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके असरार हमें नहीं मालूम, असल में क्या है नहीं मालूम, लेकिन मौत हमसे मुलाकात करेगी और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम मौत का घूंट ले लें, मौत का जायका चखें, और अगर हम मौत का जायका चखने के काबिल हुए तो ये मौत एक टॉनिक की तरीके से मुझे हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी अता कर देगी, और इसकी बरकत से जिस लाइफ में हम अभी हैं कि जहां पर हर लम्हा हर लहजा एक तगैयुर यानी चेंज है, प्रॉब्लम्स हैं, डीके है, इससे निकलकर एक परमानेंट स्टेबल और खुशहाल जिंदगी में ये मौत है। लेकिन इसके साथ साथ एक फेनोमेनन है मुर्दा होना, मय्यित होना, और ये मय्यित होने का मतलब ये है कि लोग अपने मकसदे खिलकत को पूरा ना करें, ना करने के अहल हों, और उस सूरत में वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्लाइन और डाउनवर्ड जर्नी की तरफ चले जाते हैं, और ये मय्यत और मुर्दा होना है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमको जो बात समझाई अपने कलेमात से और अपने अमल से अपने किरदार से, वो ये कि मौत खुदा की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम तोहफा है, और अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम वाकई ईमान रखने वाले हो दीन पर और दीन की हकीकतों पर, तो तुम्हें मौत का मुंतजर होना चाहिए, मौत का मुंतजर रहना चाहिए, क्योंकि मौत तुम्हें इस फानी हयात से निकालकर हयाते जावेदानी और बाकी में ले जाएगी। लेकिन साथ साथ इस बात का ख्याल रखना कि कहीं ख्वाहिशात की पैरवी और दारे गुरूर में फंस कर मय्यित ना हो जाना, मुर्दा ना हो जाना, क्योंकि अगर मय्यित हो गए तो फिर तुम सोर्स ऑफ लाइफ से कट ऑफ हो जाओगे, तुम्हारे अंदर जिंदगी बाकी नहीं रहेगी। जो मय्यित की क्या खास बात है, मय्यित में हयात नहीं होती, जो सोर्स ऑफ लाइफ है उससे डिटैचमेंट है, और रफ्ता रफ्ता कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है, जिसके बाद ऊपर आने की और तरक्की करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। एक सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे पास जो थोड़ा सा वक्त है, तो मैं 5 मिनट में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक जो एक दो जुमले आपके सामने उसको पढ़ता हूँ, बयान करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह कल हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह समेटने की कोशिश करेंगे। एक जुमला तो मैंने आपको सुनाया था कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत किसकी मानिंद है, कि जैसे एक नौजवान लड़की अपने गले पर जो गुलूबंद बांधती है और उसका निशान उसकी गर्दन पे आ जाता है, मौत औलाद आदम के लिए इस निशान की मानिंद है। थोड़ी सी वजाहत की थी मैंने, और कल इंशाल्लाह मैं इसको भी शामिल करते हुए और कंप्लीट फिर एक बात बयान करने की कोशिश करूंगा। एक जुमला सुनते जाए कि जब हुर ने इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था, और हुर का उस वक्त बहुत ज्यादा, जिस तरीके से कि बाद में उमर साद का भी यही मसला था कि उमर साद भी पूरा पूरा इस बात का ख्वाहिशमंद था कि जंग ना हो, लेकिन इंसान की जब दुनिया के अंदर लालच और हवस और हिरस उसके अंदर घर कर चुकी होती है, तो वो बहरहाल इंसान की जान नहीं छोड़ती जब तक कि उसको तबाह ना कर ले। और यही हाल उमर साद का हुआ था, वो नहीं चाह रहा था कि इमाम हुसैन से जंग करे, और हरगिज नहीं चाह रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी हो, किसी भी किस्म का मुकाबला हो जाए। तो हुर ने, यानी कि जब इमाम अलैहिस्सलाम निकल रहे थे और उसने, जिसे कहते हैं ना, बिलबिला के कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसमें सिवाय मौत के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसका जवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है एक जलाली आलम में, यानी इस जवाब से जलाल टपकता है कि आपने फरमाया अफा बिल मौते तो खवफोनी, क्या तुम मौत से मुझे डराते हो, खौफ दिलाते हो, क्या तुम मुझे मौत का खौफ दिलाने की कोशिश कर रहे हो, हाई हाथ, अफसोस है, अफसोस है, ताशा सहमो का वखाबा जन्मो का, तेरा चलाया वह तीर निशाने पर नहीं बैठा और जो तूने गुमान किया था वो गुमान बर्बाद हो गया, जलील हो गया वो गुमान। यानी क्या गुमान, कि मेरे सामने अगर कोई इस किस्म का जुमला कहे कि जिसमें मौत से खबरदार और खौफजदा कराने की बात हो, तो इस वो ये गुमान रखे कि इस किस्म की बात का मेरे ऊपर कोई असर हो जाएगा, ये गुमान बर्बाद हो गया। लस्त अखौफ अल मौत, लस्त का मतलब या लईसा का मतलब होता है हरगिज नहीं, नेवर नेवर एवर, लस्त तो मैं हरगिज हरगिज मौत से खौफ ज़दा होने वाला नहीं हूं। इन्ना नफ्सो ल अकबरो मिन ज़ालिक, और इंशाअल्लाह इन जुमलों की तशरीह थोड़ा आगे भी आज मैं इसका तर्जुमा कर दूं कि आपके जहन में एक असल बात महफूज रहे। मेरा नफ्स इस बात से बहुत बुजुर्ग तर है, अकबर है, बहुत बुलंद, कि मौत से खौफजदा हो। मेरा नफ्स इस बात से बुजुर्ग है कि मौत से खौफजदा हो। वह हिम्मती लआला मिन अहल अहमल अज़्ज़ैम, और मेरी हिम्मत इस बात से आली है और बुलंद है कि मैं जुल्म और सितम का बोझ अपने कंधे पर उठा लूं। यानी तुम मौत से मुझे डरा रहे हो, तुम आमादा करना चाह रहे हो कि मैं यजीद जैसे की बयात कर लूं। यजीद की बयात करने का क्या मतलब है, कि मैं जुल्म और सितम का बोझ उसका तौक अपनी गर्दन में डालूं, मेरी हिम्मत इससे आली है। यानी ये तमाम की तमाम चीजें क्या मांगती हैं, हिम्मत मांगती हैं, किरदार मांगती हैं, नफ्स की क्वालिटी मांगती हैं। जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि क्या ये पॉसिबल है जिंदगी में किसी भी बड़े काम को करना अगर हम अपने नफ्स की क्वालिटी को बेहतर ना बनाए, क्या पॉसिबल है। तो इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो इस बात को समझा रहे हैं कि मौत मेरे लिए इंतहाई खुशगवार और गवारा है, कि खुदा के रस्ते में कत्ल हो जाना इंसान के लिए बायस फखर है, खुदा की राह में जिंदगी को दे देना इंसान के लिए बायस इफ्तिखार है। यहां पर, इन जगहों पर आकर, इन मकामात पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौत के हवाले से हमारी कंसेप्ट को और मौत की मानवियत को मुनकलिब कर दिया है, एक इनकलाब दे दिया, कि जिसमें एक और भी आपका जुमला है कि बुरों के साथ रहना, घटिया और पस्त लोगों की सोहबत में जिंदगी गुजारना, ये नंगो आर है, और इससे कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि इंसान हक की राह में मौत को कबूल कर ले। कल मैंने आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला सुनाया था खुतबा 180 का, कि जिसमें आप कुछ लोगों को अपना भाई कह रहे हैं, जिनमें से दो तीन नाम मौजूद हैं उस खुतबे में, उनको कह रहे हैं हमारे भाई हैं, जिनके सरों को काट कर सिफीन में उनके दुश्मनों के पास रवाना कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और उनके लिए बहुत बेहतर हुआ कि आज वो इस दुनिया के गंदले पॉल्यूटेड पानी का घूंट पीने के लिए मौजूद नहीं है, वो निजात पा गए यहां से, यहां की मुसीबतों से, और उन्होंने अल्लाह से मुलाकात की और अल्लाह से अपने अजर को, अपने रिवॉर्ड को पूरा पूरा वसूल कर लिया। ये वो मामलात हैं, ये वो चीजें हैं कि जो हमें इन्हें इमाम अलैहिस्सलाम यहां पर हमारे तसव्वुर को, हमारे नजरिए को, हमारी सोच को और हमारी फिक्र को मुनकलिब कर देते हैं। अब बहरहाल यहां पर अब हमारी लियाकत है या नालायकी है कि अब हम किस हद तक इस तालीम को और इस तरबियत को कबूल करने पर तैयार हैं। लेकिन फिर मैं वही बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक रास्ता है, उसकी एक राह है, रिक्वायरमेंट है, कवानीन है, कवायद हैं। ये तमाम चीजें खाली बातें करने से हासिल नहीं होती हैं, सिर्फ बातों और तकरीरों से शुहदाए करबला नहीं बने थे। हमें इस अमर को समझना है, उस तरबियती मरहले से गुजरना है, उस राह को तय करना है। एक सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है, और मैंने है का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये हमारे लिए भी, और अगर हम चाहें तो हम भी उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मेरे इस जुमले को बहुत गौर से सुन के महफूज कीजिएगा कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के फयूजात और बरकात उनकी जाहिरी जिंदगी के साथ नहीं है खत्म, बल्कि वो मुसलसल बाकी और कायम हैं, और जो इंसान भी उसके हवाले से अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करता है उसे वो नूरानियत मिलती है, क्योंकि कुरान करीम की आयत कह रही है कि वो नूर है, वो चीज जो मुर्दा इंसान को, मैयत को हई कर देती है, वो नूर है जो खुदा की तरफ से अता होता है। और नूर एक इमटीरियल रियलिटी है, नॉन मटीरियल एंटिटी। हमारे इस बदन के या किसी के भी इस बदन के आने जाने से नॉन मटेरियल रियलिटीज पर असर नहीं पड़ता है, वो मौजूद है, और उसका बेहतरीन नमूना इस करबला की तारीख में कौन है? हजरत अब्बास अलमदा। कि अगर हम दो इंसानों को करबला में, यानी उनके अजमत के हवाले से अगर हम बात करें, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अब्बास अलमदार, कि ये यकीनन तमाम शहदा के मकामात आली हैं, लेकिन इनके जो मरातिब हैं, जो नज़र आते हैं, जो समझ में आते हैं, वो आला, बहुत बुजुर्ग। और जैसा कि रसूल खुदा के एक जुमला, एक हदीस है कि एक इंसान हकीकतन किसी मोमिन का रुतबा भी नहीं समझ सकता कि वो खुदा की बारगाह में क्या है, तो चे जाए कि वो अफराद के जिन पर अमीरुल मोमिनीन फख्र करें, कि अब्बास वो हस्ती हैं कि जो फख्र अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। आपका किरदार करबला में एक खामोश किरदार है, यानी क्या मतलब हुआ कि जिसमें हम हमारे पास ये नहीं मिलता है कि इन 6 महीनों में अब्बास कोई दिन ऐसा गुजरा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं तो कोई एक लम्हा भी ऐसा गुजरा है कि जिसमें अब्बास इमाम हुसैन के साथ ना हो, या इमाम हुसैन से दूर हो, या आपसे रुखसत होके कहीं चले गए हों, एक लम्हा भी ऐसा नहीं। लेकिन जब हम तारीख करबला पढ़ते हैं तो हमें इस पूरे 6 महीने के दौरानिये में जनाब अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलेमात नहीं मिलते कि इस मकाम पर, इस मौके पर जनाब अब्बास ने ये कहा या इस तरीके से किया। बहुत थोड़े से मकाम, बहुत थोड़े से मकाम। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि जनाब अब्बास का जो नस्बुल ऐन था वो ये था कि जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के इरादे में हो, आपकी नीयत में हो, उसको पढ़ना और उस पर अमल करना, ये बातें करना, जिराह करना, हुज्जत करना, ये उन लोगों का काम नहीं होता है कि जो किसी हस्ती के साथ, मासूम के साथ बमंजिले नफ्स होते हैं। यानी जिस तरीके से कि कुरान करीम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को नफ्स पैगंबर के तौर पर पहचानवाया है, इसी तरीके से करबला ने हजरत अब्बास अलमदार को नफ्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तौर पर पहचानवाया। उनका काम ये नहीं होता है, कील औकाल नहीं होती, बल्कि जहां पर जो इशारा है वहां पर हमारी जान हाजिर है। और एक रिवायत मैं आपको सुनाऊं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरते जाफर तैयार जंग मौता में कत्ल हुए। किस तरीके से कत्ल हुए? कि वो अलमदार थे इस्लामी लश्कर के, और एक एक करके उनके दोनों बाजू कलम हुए, और उनकी शहादत की खबर जब रसूल खुदा तक पहुंची तो आपने फरमाया था कि जाफर को खुदा ने दो बाजुओं के अजर और जजा के तौर पर, कि उन्होंने अपने दो बाजू खुदा की राह में दिए, उसके अजर के तौर पर खुदा ने जाफर को दो पर अता किए हैं, और जिसके साथ वो जन्नत में मलाइका के साथ परवाज करते हैं। अत्तय्यारु फिल जन्ना, ये उनका लकब, तभी जाफर है तैयार। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास, खुदा की कसम, उनका रुतबा हजरत जाफर से कम नहीं है, उनका रुतबा हजरत जाफर से कम नहीं है। और यही वो मकाम है कि जहां पर हमें अब्बास से बावफा से आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस बात को देखना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम जिस हस्ती को अजीज रखते हैं, जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर कोई हस्ती ऐसी हो कि जिसके ऊपर मासूम ये कहें कि अलआन कसर ज़हरी, कि मेरी कमर शिकस्ता हो गई तुम्हारे जाने से, तो ये हस्ती फकत बावफा नहीं है, बल्कि ये हस्ती खुदा के कुर्बत के मकामात पर, आला इंसानी सिफात के दरजात में बेमिसल हस्ती होना चाहिए, कि जिसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम मासूम ये जुमले इरशाद फरमाते हैं। अब्बास की वो हस्ती है कि जब 9 मुहर्रम को शिमरे मलऊन आता है उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की तरफ से कई हजार सवारों को लेकर, और ये उसी की बिना पर जल्द अज जल्द इस जंग के मराहिल तय हुए हैं, तो आने के बाद एक सदा देता है, नाम लेता है, क्योंकि जनाब अब्बास और आपके 3 भाई उम्मुल बनीन ने अपनी पूरी पूंजी और कमाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी थी। 4 बेटे थे, चारों करबला में मौजूद थे और चारों शहीद हुए, के वो उनके नाम लेता है और कहता है, क्योंकि माँ की तरफ से कबाइली रिश्तेदारी होती थी, कि मैं तुम्हारे लिए अमाननामा लेकर आया हूँ, तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम्हारे लिए आमान है। तो जनाब अब्बास पहले तो उसकी बात का, उसके सलाम का जवाब नहीं देते, खामोश रहते हैं। फिर امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی ایک تاریخی جملہ ہے، کہ سلام کا جواب دو اگرچہ کہ فاسق تم کو سلام کیوں نہ کر رہا ہو. جناب عباس سلام دے کر، سلام کا جواب دے کے پوچھتے ہیں کیا چاہتا ہے ہم سے. کہتا ہے کہ اے میرے بہن کے بیٹوں، تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا. تو آپ کہتے ہیں اے فاسق و فاجر، دور ہو، تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ ہمارے لیے تو امان نامہ لے کر آیا ہے، لیکن رسول کے نواسے اور ابن فاطمہ کے لیے قتل کا حکم، ہمیں ایسا امان نامہ نہیں چاہیے. جناب عباس ہیں جو ہر موقع اور ہر لحظے پر امام علیہ السلام کے قوت ہیں، پشت پناہ ہیں، اور بیویوں اور اہل حرم کے لیے تقویت قلب کا باعث ہیں. لیکن کربلا میں عاشور کا جب دن آتا ہے، ایک ایک کر کے شہداء راہ خدا میں اپنی جانوں کو نثار کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مردوں میں اب عباس ہیں، حسین ابن علی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور بار بار درخواست کرنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام عباس کو رخصت جہاد نہیں دیتے ہیں. جب کوئی نہ رہا تب بھی عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا، اب تو مجھے اذن جہاد عطا کر دیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بھائی، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس چاروں طرف نظر کو دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا، اے فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ وہ لشکر تو اب کربلا کی زمین پر سو رہا ہے، جس لشکر کا میں علمدار تھا. امام حسین علیہ السلام پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتے. عباس پلٹ کر خیموں میں جاتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ سکینہ عباس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں، عباس سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں، بلکہ سکینہ عباس کا ہاتھ پکڑ کر لا رہی ہیں، اور عباس نے ہاتھوں میں ایک مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے. اور بی بی کہتی ہیں بابا جان، پیاس کی شدت سے ہماری جان ہونٹوں پر ہے، چچا کو اجازت دے دیں کہ ہمارے لیے پانی لے کر آ جائیں. امام حسین علیہ السلام اس وقت ایک نظر بی بی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی، اس وقت چچا کی سفارش ہی بن کر تو آ گئی ہو، لیکن اس سفارش پر تمہیں بہت افسوس ہوگا. کہتے ہیں بھائی، اب جاؤ، اب میں تمہیں نہیں روک سکتا. جناب عباس اس شان و شوکت علوی کے ساتھ میدان میں برآمد ہوتے ہیں، داد شجاعت دی، اور جب آپ نے جنگ فرمائی ہے تو لشکر اشقیا میں کسی کی جرت نہ تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے. تھوڑی ہی دیر میں دریا تک کا رستہ صاف ہو گیا. عباس اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے دریا میں اپنی سواری کو اتارتے ہیں، اور اس وقت آپ کے چہرے مبارک پر عجیب سے تاثرات ہیں جب آپ کی نظر پانی پہ پڑتی ہے. آپ جھکتے ہیں، پانی اپنے ہاتھوں میں پانی کا ایک چلو لیتے ہیں، ایک نظر پانی کو دیکھتے ہیں، اور دور ایک نظر جناب سید الشہداء کے چہرے پر ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پانی ہے کہ جو 3 دن سے امام معصوم کے لبوں تک نہیں پہنچا ہے، اس پانی کو گرا دیتے ہیں. گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ اے گھوڑے، تو اپنے آپ کو سیراب کر لے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے. लेकिन उस फरमाबरदार हैवान ने भी अपना मुंह पानी की तरफ नहीं बढ़ाया, मशकीजे को पानी से लबरेज करके उसका मुंह बांधा, वापस चले। उस वक्त उमर इब्ने साद अलईन ने हुक्म दिया कि खबरदार, ये पानी हुसैन के खेमों तक ना पहुंचने पाए, और सब घेर लो अब्बास को। उस वक्त लश्कर अशकिया ने चारों तरफ से जनाब अब्बास को का मुहासरा कर लिया। किसी तरफ से नैजे आते थे, तीर आते थे। इसी दौरान में एक लईन की तलवार से आपका दाहिना बाजू कलम हो गया, और जनाब अब्बास ने उस वक्त रजज पड़े हैं कि आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, इन कतार तुम यमीनी, कि अगर तुम मेरा दाहिना बाजू भी कता कर दोगे, जुदा कर दोगे, खुदा की कसम मैं अबद तक हमेशा हमेशा अपने दीन की हिमायत करता रहूंगा, मैं रसूल के फर्जन की हिमायत से कभी भी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके बाद अब्बा सब जंग के हवाले से कमजोर होते चले। थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद दूसरा बाजू कलम हुआ, मशकीजे को अपने दांतों से संभाला, तीर आ रहे हैं, मशकीजा भी छिद जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। अब अब्बास ने खेमों तक जाने की आरजू व तमन्ना को खत्म कर दिया, अपना रुख दरिया की तरफ कर लिया। एक गुर्ज का वार आपके सर पर पीछे से होता है। अब अब्बास कटे हुए हाथों के साथ सवारी पर संभल नहीं पाते, जमीन पर तशरीफ लाते हैं, और जैसा कि अक्सर उलमा ने बयान किया कि ये वो मंजर है कि जिसका बयान करना मुमकिन नहीं है, कि जब इंसान के हाथ ना हो तो वो किस तरीके से घोड़े से जमीन पर गिरेगा, क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी। लेकिन उस आलम में भी अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, फर्जंद रसूल, मेरा आखिरी सलाम कबूल करें। और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास की तरफ आए, देखा कि भाई सर से पैर तक खून में नहाया हुआ है, उठाकर सर अपने जानों पर रखते हैं और अपने हाथों से खून साफ करते हैं चेहरे का। अब्बास कहते हैं कि आका, इमाम हुसैन कहते हैं कि नहीं कहो भाई, कहते आका मेरी आंखों में जमा हुआ खून साफ कर दें, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया से जाते हुए आपके रुखे अनवर की ज़ियारत करके रुख्सत। लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। परवरदिगार आलमीन, दुनिया और आखिरत में उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो अपनी ज़िंदगियां हिमायत अहले बैत अलैहिस्सलाम में जिन्होंने सर्फ की, खुदा उन्हें बेहतरीन अजर दे, और उन तमाम अशकिया को जिन्होंने अपनी जिंदगियां अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुखालिफत और दुश्मनी में सर्फ की, खुदा उनको बदतरीन अजाब दे। हम हकीकतन नहीं तसव्वुर कर सकते उन तमाम मसाइब का। खुदा जैसे ज़ियारतों के जुमले हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का जिक्र करने की बिना पर अल्लाह पाक हमारी मग़फ़रत कर दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी हमको अता कर दे, हमें उन शहदा उन औलिया की सीरत से मुलहक कर दे, कुरान और अहले बैत का नूर हमारी ज़िंदगियों में दाखिल और शामिल फरमा दे। जहाँ जहाँ इस रूए ज़मीन पर मोमिनीन और मोमिनात किसी भी किस्म की तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं, चाहे वो बीमारी हो, दुखी हो, माश हो, माशरत हो, दुश्मनों का खौफ हो। रब्बुल आलमीन जनाब अब्बास इलमदार की इस कुर्बानी, बेमिसल कुर्बानी के सदक़े में तमाम मोमिनीन मोमिनात को वो हिफाजत और हिमायत इनायत फरमाए, और खुदा तमाम सामईन और हाजरीन की भी दुनिया और आखिरत को संवार दे और बेहतर से बेहतर बना दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।